फिर अगली चीज है झूठ, जिसको पढ़ाते हुए तो मुझे डर लग रहा है। कितनों को इसमें खबर मिल जानी है कि हम मोमिन कोई नहीं है। मुझे इस वक्त ऐसे लग रहा है कि मैं कैसी जगह पे बैठी हूँ, लोगों को उनके रिजल्ट कार्ड दे रही हूँ, रिपोर्ट कार्ड। आपको शुगर है, आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको ब्लड प्रेशर है, आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है ना। एक तरफ जिस्म की मौत होती है, इस वक्त जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे ईमान की मौत है। और आप आपको अपने प्यारों के भी गम समझ आएंगे। आप कहते हैं इतना कहती हूँ, इतना सुनाती हूँ, इतना करती हूँ कोशिश, मानते ही नहीं है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे होगा, अंदर ईमान ही कोई नहीं है। ईमान तो एक रोशनी है, आपको पता है, ये अंदर की आंख है। जब ये खुलती है ना, तो नफे और नुकसान के मेयार बदल जाते हैं। फिर आप ये नहीं कहते कि सब करते हैं और यहां करते हैं और इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम झूठ को भी देख लें कि मोमिन और झूठ का क्या ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल, अयकूनुल मोमिनु जबानन, क्या मोमिन बुजदिल हो सकता है? कावट, बुजदिल। आपने फरमाया हाँ, ये तबई चीज है, बाज लोग बहादुर होते हैं और बाज बुजदिल होते हैं, तो मोमिन बुजदिल हो सकता है। बाज सहाबा भी थे, छोटी छोटी बात पे डर जाते थे, बाज तो बेदर्दी से जंगों में लड़ते, और ऐसे भी सहाबी थे शेर बड़े खूबसूरत कहते थे, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि औरत को आगे बढ़कर मुकाबला करना पड़ा, वो नहीं कर सके, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे होते हैं। खैर, फिर पूछा गया, आ यकूनुल मोमिनु बखीलन, क्या मोमिन बखील हो सकता है? बखील क्या? स्टिंजी, कंजूस, जरूरियात पे भी ना लगाए। फरमाया हाँ, मोमिनों में बुखल वाले लोग भी होंगे, सखी भी होंगे। फिर पूछा गया अल्लाह के रसूल, अयकूनुल मोमिनु किज़ाबन, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन और झूठ इकट्ठे नहीं होंगे। ये लिखते हैं कि ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी, मगर फिर क्लिंटन केस में समझ आ गई। सबसे बड़ा इस पर जो इल्ज़ाम था वो झूठ का था। इस पर इल्जाम नहीं था कि तूने मुंह काला क्यों किया और ये कोई नहीं पूछ रहा था, ये वो तो हर एक को पता है, पूछने की जरूरत ही नहीं। इस पर जो असल इल्जाम था वो ये कि तूने झूठ बोला है। अगर आप बाहर की दुनिया में जाएं, एक शख्स जो शराब के नशे में धुत हो, गंदगी और बदकारी में मुलव्वस हो, खुल्लम खुल्ला बेहयाई कर रहा हो, इसको आप ये कहकर देखें कि तुम झूठे हो, फिर देखिए वो आपके गिरेबान में हाथ डालेगा। वो नशे में धुत है, बेहयाई बदकारी कर रहा है, आप इसे बेशक कह दें कि तुमने शराब पी हुई है, वो कह देगा हाँ पी हुई है, और माइंड भी नहीं करेगा। इसको ये कहकर देखे कि तुम झूठे हो, वो भड़क उठेगा। मालूम होता है कि नबी सल्लम ने झूठ की शिद्दत को ठीक महसूस फरमाया और ईमान का सिद्क के साथ एक राबता कायम किया। जो शख्स सच्चा नहीं है, इसके दिल में ईमान नहीं है। एक लंबी हदीस का शुरू का हिस्सा है, और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن। नबी सल्लम ने फरमाया कि एक जिनाकार जब जिना करता है तो इस वक्त वो मोमिन नहीं होता, बल्कि ईमान इसके दिल से निकल जाता है। वला यसरिकु सारिकु हीन यसरुकु वहुवा मोमिन, और एक चोर जिस वक्त चोरी कर रहा होता है, इस वक्त वह अहले ईमान में से नहीं होता। वला यशरिबुल खम्र हीन यशरिबुहा वहुवा मोमिन, और एक शख्स जिस वक्त शराब पी रहा होता है, उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। इसी तरह एक शख्स खयानत कर रहा होता है, रिश्वत ले रहा होता है, या खुल्लम खुल्ला बेईमानी कर रहा होता है, इस वक्त वह अहले ईमान में से नहीं होता। अल मोमिनु मालिफ वला खैर फी मन ला यालिफु वला यूलफ, मोमिन तो सरापाए उल्फत होता है, यानी मोहब्बतें बांटता है। इस शख्स में कहाँ खैर रही जो लोगों से प्यार ना करे और लोग इससे उल्फत ना करें। और फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान, यशरु बादुहु बादन सुम शबका बैन असाबियाहु, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसे होता है जैसे एक दीवार में लगी ईंटें एक दूसरे को मजबूत कर देती हैं। वो एक बुनियाद की तरह एक दीवार होता है जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत कर देता है। सुम्मा शबी का बई नासाबी, और ये सुनाते हुए आपने दोनों हाथों की उंगलियों को यूं मिलाकर फरमाया कि मोमिन आपस में यूं होते हैं। अब आप जरा इस हिस्से में जितने अमल आए ना, उनको लिस्ट में शामिल कीजिएगा। सबसे पहली चीज झूठ, हकीकत है कि वेस्ट में लोग झूठ नहीं बोलते, यहां का मुझे नहीं पता, अमेरिका में आप से कोई गलती हुई ट्रैफिक की, रूल ब्रेक हो गया, पुलिस ने आपको रोक लिया, सीट बेल्ट नहीं बांधी, अब आपको पता है कितनी अच्छी खासी टिकट होती है ना उसका कफारा, या कोई और काम कर दें, आपके दो तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या होती है कि आप कह दें आई एम गिल्टी, सिर्फ ये एक जुमला बोलना होता है वो आपको छोड़ देता है, क्योंकि ये जुमला बोलना आसान नहीं है, अकड़ वाला आना वाला जुमला नहीं बोलता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आप झूठ नहीं बोल सकते, वैसे आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी पुलिसमैन को देखकर बांधी, तो अगर वो कहेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, आप ये नहीं कह सकते देखो बांधी भी है। ये जो हमारे लोगों में होशियारियां और चालाकियां होती है ना, ये झूठ होता है। आज हमारी जिंदगी में कहाँ झूठ है। और मैं इस चीज को जब पढ़ती हूँ कि वाकई बुजदिल हो सकता है, बखील हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, तो आपको लगता है कि फिर आज ईमान है हमारे कल्चर में, हम मोमिन कहलाने के हकदार हैं। लोग कहते हैं झूठ के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, भाई आप ये पहले बता देते, किसी की बात कह रही हूँ, भाई ये जो आप बाद में जो बातें बता रहे हैं, ये काम करेंगे इसके बाद ये होगा वो होगा, तो जब आपसे डील की थी आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? कहते हैं फिर करना किसने था। यानी लोग शुरू में जो बातें कहते हैं ना, वो बाद में नहीं हो पाती। क्या मैं और आप झूठ के बगैर बच सकते हैं? पर इसका भी एक बड़ा लतीफ सा रब देखिएगा, भाई झूठ तो बंदों से बोल रहे होते हैं, अल्लाह के साथ ईमान में इसका क्या जोड़ हो गया? तो आप नोट करें, अमूमन झूठ कहाँ बोला जाता है? नंबर एक, डर से, हम डर जाते हैं, फौरन घबरा जाते हैं। तो ईमान का तकाजा क्या है? खाफ ऊनी, मुझसे डरो, वयुहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सा, अगर आप सिर्फ अल्लाह से डरेंगे तो बंदों का डर चला गया। अच्छा, एक दूसरी वजह होती है झूठ की, बला कोई फायदा लेना। आप सोचते हैं झूठ बोल लो फायदा ले लो, तो ईमान के साथ इसका जोड़ कहाँ जुड़ा हुआ है? अल्लाहुम्मा ला मानी अलीमा आतैत वला मोती अलीमा मनात, कि अल्लाह कोई दे नहीं सकता अगर आप ना चाहें, और कोई ले नहीं सकता अगर आप ना चाहें, तो आपको पता है नफे नुकसान के सारे सिरे तो रब के हाथ में, तो मैं क्यों झूठ बोलूं? और क्यों होता है झूठ भाई, आप भी बताएं कुछ, हम झूठ क्यों बोलते हैं? डर गए किसी फायदे के हसूल के लिए, किसी नुकसान के जरर से बचने के लिए, झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, सच बोला तो मारे जाएंगे। तो वही बात है कि ला मानी अली मातैत, हम झूठ बोल के भी बच जाएंगे। फिर एक चौथी वजह होती है, बेइज्जती का एहसास होता है, जिल्लत का खौफ होता है कि हाँ सच बोला तो बेइज्जती होगी। तो वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, आप नोट करें, आपकी अल्लाह से ताल्लुक की डोरियां टूटती हैं तो झूठ बोलते हैं आप। और झूठ क्यों बोलते हैं अमूमन लोग? आदत है, माहौल है, मुआशरा झूठ वाला है, लोग एतबार नहीं करते। जब आपका दिल अपने रब से जुड़ा हुआ है, आपको क्या लगे? मानते हो तो मान लो, नहीं मानते तो ना मानो। आप कहते हैं लोग सच मानते नहीं, तो क्या आप छोड़ देंगे? तो झूठ, झूठा स्टाइल, झूठी जिंदगी, और यकीन करें वो कहते हैं कि इतना नुकसान दुश्मनों के बोलने से नहीं हुआ जितना अपनों के खामोश रहने से हुआ। हमारी जिंदगी की जो इस वक्त एक ट्रायंगल बन चुकी है ना, थोड़ा सा दीन पे आने के बाद, बाकियों की नहीं कह रही, जिनको शऊर आ गया दीन का, उनका एक बड़ा गहरा रोल है दुनिया से और जिंदगी से झूठ खत्म करने में, खास तौर पे हमारे कल्चर का झूठ, झूठी रस्में, झूठा लेन देन, झूठी मोहब्बतें, झूठे वादे, झूठे लारे। हम करते क्या हैं? सच भी मांगते हैं और झूठ भी नहीं छोड़ते। मैंने देखा है अगर लोग झूठ का साथ छोड़ दें, झूठ दुनिया से खत्म हो जाएगा। हम नाराज नहीं कर सकते, आपको पता है इनका तरीका ठीक नहीं है जो ये कह रहे हैं। मिसाल एक मौका, कोई कहता है मिक्स गैदरिंग करें, ये डिमांड है, आपको पता है ये ठीक नहीं है, आप कहते हैं अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं निकाब करके चली जाऊंगी, चले एक कोने में थोड़ा सा बैठ जाएंगे। गलत करते हैं आप, आपने उनके झूठ को प्रमोट किया। आप कहते हैं आप जो मर्जी करें, खुदा हाफिज, मैं नहीं हूं। देखिए जरा लोग कैसे सीधे होते हैं, ये मैंने और आपने लोगों को ढीला किया हुआ है अपनी बेअमलियों की वजह से। फिर इसके बाद अगली चीज देखिए, जिना की आई है ना, आपको लगता है कि आज ईमान वाले या वालियां भी जिना करती हैं? मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के भी जिना करते हैं? कभी सोच भी सकता है बंदा इसको? नबी सल्लम की जिंदगी के 23 साल के वाक़यात आप पढ़ेंगे ना, दो वाक़यात मुझे अभी तक मिले हैं, जो एक औरत और एक मर्द का। गामदिया कबीले की औरत थी और माइज सहाबी थे, जहां जिना से मुतालिक बात होगी ये दो का ही जिक्र आता है। औरत से जिना हो गया तो अल्लाह के नबी के पास आ गई, अल्लाह के नबी हद लगा दें ये करो, फिर बच्चा भी हो गया, फिर बच्चे को लेके आ गई, फिर हद लग गई। इसी तरह माइज असलमी, उनका नाम आता है। तीसरा सहाबी थे हलाल बिन उमैया, जो गजवे तबूक में भी पीछे रह गए थे। उन्होंने अपनी बीवी को देखा था किसी शख्स के साथ। ये तीन वाक्यात के अलावा मैंने नहीं कहीं भी पूरी सीरत या हिस्ट्री साहबा की मैं पढ़ा कि कभी जिना भी होता था। या चौथा वाक्य माइस बिन माइस का पढ़ा है कि वो जब गए थे मक्का में और कैदियों को छुड़ाने, तो औरत ने गुनाह की दावत दी थी। दैट्स इट। आप जाके लेक्चर सुन लीजिए, जिना के मौजू पे किताबें पढ़ लीजिए, वाक्य आएगा तो या तो पीछे से किफल का सुना दिया जाता है हर दफा। मक्का के दौर में ये जिना की वबा थी नहीं, जो आज आपको घर घर दिखेगी। यानी आप सोचिए जरा इस बात को, हालात और असबाब कैसे बनते हैं। और इसके बाद देखिए चोरी, हमारे मुल्कों में चोरियां होनी चाहिए, मुसलमान और मोमिन चोरी कर सकता है? देखिए चोरी वो करता है ना जिसको इस बात का यकीन ही नहीं कि अल्लाह मुझे दे सकता है। डायरेक्ट अकीदे से ताल्लुक है भाई। चोरी के बाद भी आपको नसीब तभी होगी जब अल्लाह चाहेगा, तो एक गरीब बंदे से क्यों मांग रहे हैं उसकी इजाजत के बगैर? अल्लाह से मांग लीजिए, फिर ताल्लुक बिल्ला इसमें। फिर शराब, मैं सोचती थी कि शराब सिर्फ बाहर के मुल्कों में पी जाती है, लेकिन शराब अब हर मुल्क में पी जाती है। ईमान नहीं रहता। फिर आप देखिए मोहब्बत करना, मालिफ व यूलफ, यालिफ व यूलफ, लोगों से प्यार करना भी ईमान की अलामत है। और क्या हम वाकई एक सीसा पिलाई दीवार की तरह सोसाइटी में खड़े हैं? ये सारा कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे फिर समझ आएगा। जितना कुछ सुना है इसको सुनकर आपको क्या फिक्र लाहक हुई, इधर से आप लोग शेयर करना शुरू करें। चंद लोग
जब ईमान इतना अंदर आ जाता है कि ज़मीर ही अपने आप पुलिस का काम देती है कि पुलिस की ज़रूरत ही नहीं। और मुझे तो ईमान ऐसे लग रहा है जैसे जैसे शन है जैसे अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए टिप्स होते हैं ना, तो ये इस तरह की टिप्स आपकी ईमान को खूबसूरत रखते हैं।
बिल्कुल, ब्यूटीफाई योर सेल्फ। सच का इन्होंने अच्छी बात कही, बल्कि कि ईमान हमें खूबसूरत करता है। हम जितने मर्जी खूबसूरत हो जाएं और चाहें तो अपनी खूबसूरती बिगाड़ दें। जी आप
ईमान का जैसे आपने बताया था चेक पॉइंट जुबान है, तो मैंने अपने लिए अमल की बात ये ली है कि अपने गुस्से को और अपनी जुबान को कंट्रोल करें, स्पेशली बच्चों के मामले में।
इंशाल्लाह ताला।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम।
ईमान रोशनी है और अंदर की आंख है, अगर ये दुरुस्त होगा तो हमारे दूसरों से ताल्लुकात भी अच्छे होंगे।
इंशाल्लाह ताला।
जी मैं साथ साथ अपना मुहासबा कर रही थी और मैं अपने अंदर ईमान के लेवल को कंट्रोल रही थी, तो वाकई ये एक किस्म का हमें दोबारा से रिमाइंडर मिला है कि अगर हमारे में जो कमी है उसको दोबारा से हम सही करें और अपने ईमान के लेवल को उस लेवल पे लाएं जो कि डिमांड है।
इंशाल्लाह ताला।
अस्सलाम
वालेकुम।
मैं सोच रही थी कि हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन हम जानते हैं बूझते वो काम काट जाते हैं तो जिसका हमें इलम नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम ये ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास बस का कार्ड नहीं भी होता तो हम ट्रैवल कर लेते, तो ये भी हम चोरी के जुमरे में आ जाते हैं ना कि हमारे पास ट्रैवल कार्ड नहीं है तो हम कानून के साथ चोरी कर रहे हैं, तो लेकिन हम खुद को दावेदार करते हैं कि हम ईमानदार हैं। हम
देखिए जो अल्लाह की अदालत में खुद को खड़ा समझे ना, वो दुनिया की अदालतों से कोई नहीं डरता। और जो बात इन्होंने कही कि अल्लाह ने हमारे अपने अंदर एक अदालत रखी हुई है ना, उसे लवामा की सूरत में। जी
मैंने भी यही अपने पे लिया कि कोई भी मुझे पे बात करेगा या गुस्सा करेगा कि मैं अपने आप को चेक करूंगा, इसमें मेरा ही कोई कसूर है।
इंशाल्लाह।
हम अपने अमाल की खेती हैं। जी मैं भी खुद अपने आप का मुहासबा कर रही थी, इन सारी चीजों में ऐसे अपने आप को चेक कर रही थी دیدہ میرے میں کمی ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری چیزوں پر عمل کرنے سے ایسے جیسے بندہ نہ کسی کو نقصان دے سکتا اور نہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتا، انسان.
آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو جاتے، یہی دنیا کی جنت ہے. لوگ لوگوں میں کھوئے ہوئے ہیں، آپ رب میں کھو جائیں، یہی جنت ہے. جی
جی مجھے بھی یہ زیادہ بات ابھی تک ہی وہ جیسے ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جیسے اچانک بندہ دین میں آ بھی سکتا ہے، سجا بھی سکتا ہے. اس بات میں اس وقت سے ایسے جیسے ٹانگیں کانپنے لگی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع بھی آئے کہ ہم جس طرح خود سے ہی ہم کہتے ہیں آپس میں شیئرنگ کر کے کہتے ہیں کہ میں کیسے دین کی طرف آئی یا کس چیز کون سی چیز مجھے لے کے آئی، تو اپنے بارے میں مجھے یہی لگتا تھا کہ اچانک ہی آئے، کہ کوئی اس طرح کا خاص پروگرام نہیں تھا. تو اس بات نے ڈرا دیا کہ اچانک نکل بھی سکتے ہیں.
جی بالکل، یہ ڈرنے کی بات ہے. اور میں تھوڑی سی آپ کی بات بڑھا دوں، جب ہم اچانک دین میں آتے ہیں تو پھر ہم بعد میں اس کو معجزہ کہتے ہیں، میریکل کہتے ہیں، پھر روتے ہیں. لوگوں کی شیئرنگز آپ سنتے ہیں نا جب وہ آتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو اب گھروں سے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو ہر دن کوئی نہ کوئی میسیجز ان کے آئے ہوتے ہیں. جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کو ایک معجزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ دین سے جاتے ہیں نا تو آپ اس وقت خود کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا چیک پوائنٹ ہے کہ جانے والوں کو جانے کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی دین ملے تو نعمت لگتی ہے، دین چھنے تو نعمت چھننے کا احساس نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہی ٹھیک تھا، ہم تھوڑے زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے. تو چلے بھائی آپ خود اپنی خوشیاں لے کر دیکھیں، ہماری زندگی کافی اپسٹ ہو گئی تھی، ہمارے شوہر ہم سے کافی ناراض ہو گئے تھے، ہمارے بچے کافی اگنورڈ ہوئے ہیں، تو ذرا اب کر کے تو دیکھیں. ہماری ہیلتھ کافی خراب ہو گئی تھی، آپ جائیے پھر اب اپنے کام خود کریں، جو اللہ نے آپ کے کرنے تھے کر دیے. مجھے لگتا ہے جیسے یہاں سے جانے کا رستہ لیکن واپسی کا نہیں ہوتا نا، چیک پوائنٹس جو ہوتے ہیں. تو جب دین سے بندہ نکلتا ہے نا تو پھر اس کی سوچ بھی اس کے مطابق ہو جاتی ہے. جی آپ پلیز.
ایمان کی تعریف میں یہ سارے پوائنٹس جتنے بھی ہیں اسے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پتہ چلتا ہے. اور میں محاسبہ بھی کر رہی تھی کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو لوگوں سے تو پھر بے نیاز ہو جاتا ہے انسان، اس کو فکر نہیں رہتی، اور جب فکر نہیں رہتی تو پھر یہ والی جو خامیاں ہیں یہ بھی انسان کے اندر سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہیں انشاءاللہ. مگر یہاں پہ میں پھر میں سوچ رہی تھی کہ خلقِ خدا سے محبت کا بھی تو ایک دعویٰ ہے نا، کہ میں لوگوں کو اگر مجھے اللہ سے محبت ہے تو مجھے اللہ کے بندوں کی بھی فکر اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی اپنی اپنوں کی ہے.
بالکل، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی بھی خیر چاہیں. ایک ہم خود بچ جاتے ہیں، ہم نہیں غلط کام میں شامل ہوتے، دوسرا یہ کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ بھی بچ جائیں. یہ محبت کی دلیل. اور اس میں کبھی نہ ڈرے، رشتے ہیں، قریبی ہیں، ناراضگی ہو جائے گی سسرال، ہاتھ پکڑ کے پیار سے اس کو کہہ دیں کہ بیٹا اس میں آپ کا نقصان ہے، میں آپ کا فائدہ چاہتی ہوں، میں خود بھی اس سے بچ جاؤں پر میں آپ کو بچانا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے اگر اندر درد ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سر پیدا کرے گا. دیکھیں اب ہم میں سے ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق لے گا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیزیں دیتے ہیں وہ اپنی شان اور اپنے کمال سے دیتے ہیں نا. تو آپ جو پڑھیں نا اس کو اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پہ، اپنے محاسبے کے طور پہ گھر جا کر ضرور کریں. ادروائز یہ ہوگا کہ سنتے تو جا رہے ہیں، کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں ہے، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے نا، لیکن جب آپ اس کو پکڑ لیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.